ఓ జ్ఞానతి మీరందరి జ్ఞానాంజన శరాక చక్షుణి స్మశ్రీకుడువైన శ్రీ చైతన్య మనోభిష్టం స్థాపితం చేయన భుజని స్వయం రూపక దామయందు దాటి సోదాను యేసుకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీద్వైత గదాధర శివాసతి గౌరవ హరే కృష్ణ 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 హరి హరి శ్రీరామ్ హరి రామ్ రామ రామ హరి హరి. తో అర్జున్ నే జబ్ పిచ్చలే అధ్యాయమే సాత్వే అధ్యాయమే జబ్ కుచ్ శబ్ద సునే థే అధియజ్ఞ అధిభూత్ అధిదైవ, तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न था कि आप इन सब चीजों को स्पष्ट करके बताइए कि जिसको आप अधिदेव कह रहे हैं वो क्या है, जिसको आप अधियज्ञ कह रहे हैं वो क्या है, जिसको आप अधिभूत कह रहे हैं वो क्या है, आप आत्मा किसे कह रहे हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि लोग इसका दूसरा अर्थ निकाल दें. जनरली संस्कृत इतना बड़ा विशाल भाषा है जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो अर्जुन ये सर्टिफिकेट लेना चाहता था कि जिसको आप आत्मा भी बता रहे हैं उसका अर्थ आपने क्या किया है. तो अर्जुन ने इसका ऐसे कुछ कितने प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने, सब मिला करके 8 प्रश्न पूछे थे. तो मैं समझता हूं कि आप सब भक्तों ने ये 8 प्रश्नों को अलग से नोट डाउन किया होगा कि राइट, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अधि ये रहता कहाँ है अधियज्ञ, और मृत्यु के समय पे उसको कैसे याद किया जाए. ये 8 प्रश्न आपने लिखे शायद, राइट, 8 अलग अलग प्रश्न थे अर्जुन के. तो जनरली मैं ऐसा एडवाइस करता हूँ हमेशा कि जब आप क्वेश्चन को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख देना चाहिए 8 क्वेश्चन, फिर भगवान ने 6 प्रश्न का उत्तर 2 श्लोक में दे दिए, तो वो जो 6 प्रश्न का उत्तर है वो उसके सामने लिख देना चाहिए डायरेक्ट, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि अर्जुन का प्रश्न क्या था और भगवान का आंसर क्या था. जैसे अर्जुन ने पूछा था ब्रह्म क्या है, जीव है या परमात्मा, तो भगवान ने सामने रिप्लाई किया था ब्रह्म का अर्थ होता है जीव और परम ब्रह्म है परमात्मा. फिर अर्जुन ने पूछा अध्यात्म क्या है, सूक्ष्म शरीर या आत्मा, तो भगवान ने कहा अध्यात्म है वो है जीवात्मा का स्वभाव, राइट. फिर कर्म के विषय में पूछा कर्म किसे कहते हैं, आध्यात्मिक कर्म या भौतिक कर्म, तो भगवान ने कहा कि जीव का जो जर्नी है, जो यात्रा है कर्म का, उसको कर्म कहते हैं, जिसके अनेक 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 जन्मों से जो ये कर्म होते रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक शरीर प्रकट उसने धारण किए, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मनुष्य के योनि, 84 लाख योनि, तो 84 लाख योनि में घूमते 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 आज हम यहाँ पर आए हैं मनुष्य शरीर में. अहमदाबाद में हमने शरीर लिया, राइट, आप अहमदाबाद से या यहाँ हम रह रहे, तो ऐसा शरीर एक्चुअली जो हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं वो हम है नहीं एक्चुअली, जो मिरर में देख रहे हैं कैसा है नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने पीले रंग का कुर्ता है, इनका ब्लैक टी शर्ट है फॉर एग्जांपल, तो वो तो चेंज भी हो सकता है ना, वो तो चेंज परिवर्तन हो सकता है. तो इस तरह से हम जो एक्चुअली हमारा देख रहे हैं रूप मिरर में वो हम नहीं है, वो तो हमारे कर्मों के कारण अलग अलग जगह से गुजरते हुए ऐसा शरीर हमें डिजाइन किया, तभी उस डिजाइन वाले शरीर में हम अभी बैठे हैं और हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं इत्यादि, राइट. फिर अधिभूत के विषय में पूछा तो पूछा आप किसको अधिभूत कहते हैं, तो भगवान ने कहा अधिभूत जो है वो है ये सृष्टि जो निरंतर परिवर्तन हो रही है। अधिदेव के विषय में पूछा कि आप देवताओं का इसका अर्थ देवता हो रहा है या विराट रूप, तो भगवान ने कहा अधिदेव का अर्थ होता है विराट रूप भगवान का। और अधियज्ञ जो है उसके विषय में पूछा कि अधियज्ञ क्या है, तो अर्जुन का पूछना था कि अधियज्ञ क्या देवता है कृष्ण है या कौन है अधियज्ञ आप किसे कहते हैं, तो भगवान ने कहा अधियज्ञ हृदय में विराजमान जो परमात्मा है उसको अधियज्ञ कहते हैं, आई मीन परमात्मा। फिर अर्जुन ने पूछा कि वो रहते कहां पर है, तो भगवान ने कहा वो रहते हैं हृदय में। अभी एक प्रश्न और बाकी रहा था अर्जुन का कि उनको मृत्यु के समय पर कैसे याद किया जाए, या फिर उनको मृत्यु के समय पर याद करने से क्या फायदा हो सकता है, तो उसके आंसर में भगवान 5 नंबर का श्लोक सामने बताते हैं जिसको आप आज पढ़ेंगे। पढ़िए 5 नंबर।
और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे सब भाव को प्राप्त करता है, इसमें वंश मात्र भी संदेह नहीं है।
ये आई थिंक केम भी है की मेमोरी वर्ड्स अंत काले चुमामे वह स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयास समर्दाम संशय। भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप से अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, अंतकाले च माम एव एव का अर्थ होता है और कोई नहीं और कोई नहीं, अंतकाले च माम एव स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है जो चिंतन या स्मरण करते हुए श्रवण, स्मरण में बहुत सारी चीज आती है जिसमें आप उनको दर्शन करके स्मरण हो सकता है, उनका श्रवण कान से सुन करके उनका स्मरण हो सकता है, मन से चिंतन करके भी स्मरण हो सकता है, तो स्मरण में बहुत सारी चीज आती है, भगवान बहुत स्मार्टली यूज किया स्मरण, नहीं तो श्रवण मुक्तवा भी बोल सकते थे या कीर्तन मुक्तवा भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने स्मरण मुक्तवा बोला ताकि ये तीनों चीज आए एक साथ। क्योंकि क्यों स्मरण बोला गया है, क्योंकि स्मरण करने का अर्थ होता है दैट इज द हाईएस्ट थिंग वन कैन डू स्मरण।
तीन चीज बोला
श्रवण कीर्तन
है
स्मरण या फर्स्ट नवदा भक्ति के और स्मरण को इसलिए बल दिया गया है यहाँ पर, एक्चुअली बहुत लंबा श्लोक का तो इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट श्लोक का, लेकिन स्मरण इसलिए कहा गया है क्योंकि दो चीज भगवान कहते हैं कि विधि और निषेध, हमेशा कृष्ण का चिंतन करो और कभी कृष्ण को भूलो मत, ऐसा भगवान ने ऑलरेडी बताया, फिर 9वें अध्याय में आएगा मन मना मुझे मन लगाओ, तो स्मरण इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अंतकाल पे होना आवश्यक है। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर का अर्थ होता है शरीर, मुक्त्वा मुक्त होते समय, जैसे अभी हम बता रहे थे कि ये शरीर जो है वो हम एक्चुअली है नहीं, वो मिरर में जो देख रहे हैं वो हम नहीं है एक्चुअली, वो हमने कुर्ता पहना हुआ है कि वो पर्टिकुलर ऐसा हमारा ऐसे ऐसी आंख ऐसे नाक ऐसा दिख रहा है हमारे, हम ऐसा दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में हम वो है नहीं, क्योंकि वो तो रोज नया चेंज हो जाता है, बाद में कोई नया नई आंख आएगी कोई नया चेहरा आएगा। वो कलेवर जो है उसको कलेवर शब्द का प्रभुपाद क्या अर्थ किया है, कलेवर वर्ड टू वर्ड में क्या है,
शरीर को
कलेवर को कई बार वस्त्र भी बोलते हैं, कलेवर बदल दिया शरीर, स्वर्ण का कलेवरम यह प्रयाति सम्मत भावम, तो उसको क्या प्राप्त होता है, मेरा भाव या मेरे पास आता है मदभाव, और इसमें कोई संदेह नहीं है, अत्र न संशय, मीन्स भगवान ने इसको एक प्रिंसिपल के रूप में स्थिर किया, स्थापित किया सिद्धांत के रूप में। सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है? जो व्यक्ति शरीर त्याग करते समय मेरा चिंतन करेगा वो मेरे पास आएगा, ये सिद्धांत हो गया। अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, सिद्धांत का अर्थ होता है प्रिंसिपल, अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो यही वास्तविक परीक्षा है जीवात्मा की, कि अंत समय में क्या होता है, ये वास्तविक परीक्षा है। जनरली हम पूरे जीवन के समय पर हम कृष्ण का सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन अंतकाल में हम किसका चिंतन करते हैं? अंतकाल को कई बार कहा जाता है कि इतना भयानक होता है कि जिसमें आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना भयानक होता है वो। ऐसे केवल उसका अनुमान करने के लिए ऐसा बताया गया है कि 10,000 स्कॉर्पियन बिच्छू एक साथ अगर आपको डंक दे, एक साथ आपको डंस करे, तो एक छोटा सा मच्छर काटने पर आप परेशान हो जाते हैं, राइट? और कभी कोई कांटा चुभ जाने पर आपके मुंह से आवाज निकल जाती है। तो आप सोचिए कि 10,000 मीठी एक साथ आपको डंस दे, तो आपका सिचुएशन कैसा होगा? इसका ये नहीं कि आपको कोई दंस दे रहा है, लेकिन ये जितना पीड़ा उसमें होता है, उस प्रकार का पीड़ा इस शरीर में से आत्मा को निकलने के टाइम पे होता है, उतना पीड़ा। क्योंकि चेतना एक एक करके सिकुड़ने लगती है आपके शरीर में, ऐसा मानो जैसे आपकी सारी हड्डियां कोई तोड़ रहा है, हड्डियां टूटने का पूरा एक एक लिम में, हाथ में, पांव में, सभी जितना शरीर में जो कुछ भी है वो सब, ऐसा मानो ऐसा लगेगा कि जैसे आपको कोई कुचल कर मसल रहा है, आपको कोई दंड, आपको कोई काट रहा है, आपका टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, आपके हड्डियां, आपके वेन्स, आपके मसल, ये सब कुछ तोड़ा टूट रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें से प्राण चले जा रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, चेतना निकल रही है इसमें से। और फिर किसी व्यक्ति को नमनेस का आपको फीलिंग पता है, नमनेस आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जैसे अगर आप समझ लो कि आप सोते समय अगर आपने गलती कर दी और आपका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, आपने गलत खाली कर दिया, आपने हाथ रख दिया इसके ऊपर, तो आप उस हाथ को हिला भी नहीं सकते, isn't it? हालांकि आपका आप वही हो, आपकी शक्ति सारे आप देख रहे हो, ये आपका ही हाथ, दूसरे किसी का हाथ भी नहीं है, आप देख भी रहे हो, लेकिन आप उसको हिला भी नहीं सकते, isn't it? फिर धीरे 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 चेतना वापिस आती है, पूरा एक साथ तो आता नहीं चेतना, क्योंकि ब्लड धीरे धीरे आता है और चेतना पूरा आता नहीं, तो क्या होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है आत्मा, लेकिन उसमें भी पेन होता है, पूरा पेन होता है, वो कुछ नहीं कर पाते जब तक उसको 2-5 मिनट लगेगा उसको नॉर्मल होने में। जब वो पूरा नॉर्मल होगा फिर आपको एज यूजुअल हो गया। छोटा सा एग्जांपल कि एक हाथ को अगर दबा दिया जाए कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटे के लिए, तो उसमें चेतना चली जाती है, कितना नम हो जाता है कि अगर आप उसको सुई लगा दो ना तभी भी कुछ पता नहीं पड़ेगा, इतना नम हो जाता है, पता ही नहीं पड़ेगा कि आपका हाथ है भी या नहीं है ऐसे। और ये तो हम पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं, पूरे बॉडी में ऐसा हो जाए, जैसे एनेस्थीसिया देते तो कैसा होता है, पूरा नम, कितना काटो फूटो कुछ भी करो, कुछ कोई चिल्लाएगा नहीं, बोलेगा नहीं, कुछ नहीं, है ना, आराम से जो करना है करो, है ना। तो ये नमनेस मृत्यु के समय पर पूरा बॉडी नष्ट हो जाता है। इसलिए कुलशेखर महाराज कहते हैं कि वो अभी नेक्स्ट श्लोक में भी इसका आएगा, इसी करके वो कहते हैं कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव विसतु मे मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। सुना आपने ये प्रपद स्वयं गाता है। मेरे पास एक टेप था, आई डोंट नो अभी कहाँ पर है, एक टेप था जिसमें ये मेरे 95-96 की बात हो रही। तो प्रभुपाद ऐसे शुरुआत ही इस तरह से करते हैं, कृष्णा तो ये पद पंकज ऐसे शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर हरे कृष्ण कीर्तन करते कीर्तन शुरू करते हैं। आई मीन देयर मस्ट बी सम टेप समवेयर, ऐसा है। इसका अर्थ है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, ये क्या नाम है कुलशेखर की जो बुक है क्या बोलते हैं उसको, मुकुंदमाला सूत्र, कुलशेखर जी ने जो प्रार्थनाएं लिखी है उसको प्रभुपाद जी ने उसको यूज किया है। आई मीन वेरी स्पेशल, ये पर्टिकुलर श्लोक इतना स्पेशल है, प्रभुपाद इसको रिपीट किया है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, आपका चरण कमल जो है वो कमल की भांति है और जिसमें मेरा मन अभी स्थिर है। त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव विषतु मे मानस राजहंस, मेरा मन जो है वो आपके चरण रूपी कमल में फूल में, मेरा राजहंस रूपी मेरा मन जो है वो स्थिर है, इज फिक्स्ड नाउ राइट नाउ इस समय। जैसे समझ लो कि आप भक्तों की संगति में हो, गुरु की संगति में हो, आप अर्चा विग्रह की उपासना कर रहे हो, तो आपका मन कहाँ पर है उस समय? कृष्ण में स्थिर है, इधर उधर नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि प्राण प्रयाण समय, अभी मेरा मृत्यु दे दो, अभी मुझे मृत्यु दे दो। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण का समय आएगा, जब शरीर त्याग करने का समय आएगा, उस समय कफवात पित्त से कंठावरोधन विधौ, मेरा जो कंठ होगा वो रुक जाएगा। इट हैपन्स, आई डोंट नो आपको किसी को अनुभव है कि नहीं, कंठावरोधन में क्या होता है, आप बोलना चाहते हो, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बोल नहीं पाते आप, ऐसा हो जाता है कंठावरोधन विधौ। कंठावरोधन विधौ उस समय कफ वात और पित्त सारे बैलेंस खो चुकते हैं, उसका सारा डिसऑर्डर हो जाता है, कफ का डिसऑर्डर, वात का डिसऑर्डर और पित्त का डिसऑर्डर, तो तीनों इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो व्यक्ति बोल ही नहीं पाता कुछ और उसको बड़ी वेदना, बहुत पेन हो रहा है। कंठावरोधन स्मरणम कुतस्ते, उस समय मैं आपका चिंतन कैसे कर पाऊंगा, इतना करिश कठिन समय में आपका चिंतन कैसे कर पाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु थोड़ा बुखार आता है तो बोलते आज माला नहीं हो पाएगी, थोड़ा बुखार होता है तो आज मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा तबीयत खराब है तो मैं ये नहीं, प्रभु मैं तो वैकेशन पे हूँ, क्यों हेल्थ खराब है, थोड़ा सा हल्का सा कोई फ्रैक्चर हो गया तो बोले प्रभु मेरा तो फ्रैक्चर है ना, तो मैं तो 2 महीने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई कंठावरोधन मृत्यु के समय पे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब क्या करोगे, इज़न्ट इट? अभी तो चिंतन कर पा रहे हो। आई हैव मेनी एग्जांपल्स, जैसे ऑफकोर्स सन्यासी तो हमारे है ही एकदम, जैसे इस जयपथक हमारा इतना परिश्रम इतना करते है, शरीर में बिल्कुल ऐसा कोई डॉक्टर ये बोल ही नहीं सकता कि इज फिट। राधा गोविंद महाराज कुछ उनका शरीर में है ही नहीं, कुछ कोई शक्ति ही नहीं है उनकी, हाथ नहीं उठा पा रहे अपना, मुश्किल से यू नो जयप्रदा का स्वामी कांट इवन, उनको खड़े होने में भक्तों की सहायता चाहिए। राधा गोविंद महाराज को भी हाथ उठाने के, उनको हाथ उठाना है तो भी भक्तों की सहायता चाहिए, और वो तो दिन ब दिन बिगड़ भी रहा है सिचुएशन। कुछ भी चीज अपने आप से नहीं कर पाते हो। तो ये तो अटल सत्य है कि ये शरीर में जब मृत्यु का समय आता है तब पूरा शरीर बेकार हो जाता है, तब भगवान का चिंतन आप कैसे करता है? यू कांट रिमेम्बर कृष्णा। आई मीन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट, डजंट मीन दैट यू कैन नॉट एट ऑल, इट मीन्स दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कृष्णा।
ये हमारी कांटी था, वो मतलब ऐसा था कर्मी जैसा था, लेकिन सुबह और शाम माता जी का नाम लेते थे, दिया करते थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। मतलब पूरा जीवन उन्होंने माता जी का ही सेवा किया था। फिर लास्ट में जब आप जो बोल रहे थे उनकी कंडीशन थी, हमको कुछ भान नहीं रहा, लेकिन उनके मुंह से राम राम निकल रहा
ऐसा,
क्योंकि उन्होंने तो राम की भक्ति ही नहीं की थी, माता जी
पूर्वजन्म के संस्कार, पूर्वजन्म के संस्कार, या कभी इस जन्म में कोई ऐसी अज्ञात सुकृति की हो तब ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। आई हैव सीन प्रैक्टिकली, मैंने अपनी आंखों से देखा है। व्हेन माय ब्रदर वाज गिविंग अप हिज बॉडी, मेरा भाई जब शरीर छोड़ रहा था, तो प्रैक्टिकली उसका सांस पूरा फूल गया था, एकदम हैवी ब्रीदिंग हो रही थी। आई वाज जस्ट नेक्स्ट टू हिम, बाजू में ही थे, और हिज आईज वॉज देर आर कमिंग आउट ऑफ सॉकेट्स, उनके आंखों में से जो आईज जो होता है ना, ये सॉकेट के बाहर आ जाते हैं, तो सॉकेट के बाहर आ गई थी आईज, एंड उनके पास कोई शक्ति थी नहीं कि वो कुछ बोल सके, फिर भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे ऐसा इशारा किया और थोड़ा सा हल्का सा वो बोले, यू स्टार्ट कीर्तन, अब कीर्तन शुरू करो, हल्का सा इशारा किया मुझे, और फिर वो बोले भी हल्का सा थोड़ा सा कीर्तन शुरू करो, मीन्स उनको पता पड़ गया कि मैक्सिमम फ्यू मिनट्स, बोल दिया उन्होंने, एंड देन विद इन लाइक लेस देन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर ही लेफ्ट द बॉडी, बट ही सेड दैट दैट मोमेंट इट वाज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, आई सॉ, मैं देखा था, बहुत मुश्किल था वो सिचुएशन, और उसमें डॉक्टर उनको हेल्प करना चाहते थे, तो सुई लगाई थी, डॉक्टर वांटेड टू हेल्प हिम, कर नहीं पाए डॉक्टर, हमारा तो फर्ज रहता है कि हम कुछ ना कुछ करके उनको बताने का प्रयास करें, तो डॉक्टर उनको हेल्प लगा, तो डॉक्टर सुई लगा रहे, तो सुई का पेन एक्स्ट्रा था, बोनस में मिला उनको, बॉडी का तो पेन था ही, लेकिन डॉक्टर की सुई का पेन उनको बोनस में मिला, जस्ट इमेजिन ऐसी सिचुएशन में बड़ा कोई व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करे, सो डिफिकल्ट, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधो, कंठ अवरोध हो जाए, स्मरणम कुतस्ते, मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा, सेज दैट यू कैन सी इट आउटसाइड, सो क्योंकि भौतिक शरीर जो है उसका एक अपना क्वालिटी है कि वो भौतिक है। प्रभुपद बताए थे कि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये शरीर के संबंधित जितनी भी असुविधाएं है वो सबको रहेगी, लेकिन इसका एक ही उपाय है, भक्तों को इसका अर्थ, इसका पेन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपने आप को एक शरीर नहीं मानते, वो अपने आप को आत्मा मानते, तो इसलिए उनके जो पेन होता है ना, वो लोगों के दृष्टि से बड़ा भयानक होता है पेन, लेकिन आपको वो पेन फील नहीं होता है। हालांकि पेन तो होता है, जैसे अगर आप सुई लगाओगे तो पेन तो होगा ही ना मुझे, फॉर एग्जाम्पल, राइट, किसी को भी, लेकिन वो सुई का जो पेन है वो उनके लिए संसार दावानल के पेन से कुछ भी नहीं उसके सामने, क्योंकि वो कृष्ण का चिंतन में लगे हुए हैं, इसलिए उनको इस प्रकार के पेन का वैल्यू नहीं है, दे डोंट बॉदर अबाउट सच पेन, उनका वैल्यू नहीं है। जैसे एक बार मैं जयप्रता का महाराज के साथ था, कुछ आधा पौना घंटा उनके कमरे में था, तो बहुत सारी डिस्कशन हुई थी, जिसमें से उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया था, क्योंकि वो ऐसे तो गुरु है, सब जानते हैं सब कुछ, लेकिन जब उनका स्ट्रोक जब पहली बार आया था, फर्स्ट टाइम जब स्ट्रोक आया था 2008 में, तो स्ट्रोक आने के बाद जब 6 महीना लगा था उनको, तो हल्का सा रिकवरी ट्रैवल कर पाए थे, 6 महीने के पश्चात साल 6-8 महीने के बाद पहली बार मेरा उनका मुलाकात हुआ था। तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, क्योंकि बोले मैं भी अब तो व्हीलचेयर में हूँ, तुम भी व्हीलचेयर में हो, तो अपने दोनों साथ में आ गए, यू आर सेइंग लाइक दिस, इस तरह से बोल रहे थे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि अगर अपने आप को आत्मा मानते हो कभी भी, तो आपको कभी बॉडी का पेन नहीं आएगा, लेकिन जिस समय अगर आप ये मानोगे कि आप शरीर हो, तो सारी असुविधाएं आपको चुभेगी। इसलिए भक्तों के पेन को पेन नहीं समझना चाहिए, उनके पेन को भगवान संभालते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि भक्तों के लाइफ में जो पेन आते हैं ना, वो पेन भगवान क्या करके उसको, ये उनकी लास्ट लाइफ होती है, अंतिम जीवन होता है उनका। कोई साधारण भक्त है, ऑफकोर्स ये सब तो भगवान के अपने भक्त पार्षद है, लेकिन साधारण कोई भी भक्त है, अगर वो पूर्ण रूप से शरणागत है, तो उसके जीवन में जो भी समस्त पेन आता है, ये बताना चाहता है कि वो इसका अंतिम जीवन है, यहाँ पर भी इसके बाद कोई आगे का कोई पेन नहीं होगा। इसलिए भक्त कोई परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरे लाइफ में पेन क्यों आ रहा है, अभी अच्छा है ना, 10 जन्म के बाद जो मिलने वाला है वो इस जन्म में खत्म करते हैं भगवान, तो 10 जन्म का कोटा ही खत्म, इस जन्म में भगवत धाम जा सकते हो। तो इसलिए कभी भी पेन से परेशान नहीं होना चाहिए, तो ये है हमारा अंतिम परीक्षा। परीक्षा तो हम रोज देते हैं, कुछ एजुकेशनल एग्जाम होती है, कुछ व्यवहारिक जीवन की परीक्षाएं होती है। जैसे रोज के जीवन में आपको कोई व्यवहार करता है, कोई कुछ पूछता है, आप उसको किस प्रकार से बात करते हो, उसको आप कैसे डील करते हो, ये सारी परीक्षा ही तो है, और क्या है। रोज कुछ ना कुछ आता है आपके लाइफ में, उस समय आपका व्यवहार क्या है, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, ये सब आपकी एग्जाम है। लेकिन उसी तरह से मृत्यु के समय पे आप क्या करते हो, ये आपकी अंतिम परीक्षा है। तो जनरली स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पढ़ने वाले लोग होते हैं, पता है आपको, पूरा साल कुछ नहीं पढ़ेंगे, और जब एग्जाम का टाइम आएगा तब सारी किताबें खोलेंगे, 24 घंटा पढ़ते रहेंगे, किताब के अंदर पूरा स्नान कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एग्जाम पास करने साल में कुछ किया नहीं, तो ये बड़ा रिस्की मैटर है, हुआ तो हुआ, ना हुआ तो गया, राइट। लेकिन अच्छा विद्यार्थी कैसा होता है, तो साल भर में पढ़ता रहता है, तो उसको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरह से लाइफ टाइम में जो कुछ करते हैं, वो कृष्णा भक्ति आपको अंत समय में हेल्प करती है। सो उसके आगे वाले श्लोक में भी भगवान इस विषय का बल देते, पढ़िए।
शरीर नो त्याग करती वक्त मनुष्य जे जे भाव नु स्मरण करे छे एवज भाव ने निश्चित पणे प्राप्त करे।
यहाँ पर ये प्रिंसिपल को भगवान ने स्थापित किया, जनरल रूल, जो जिस भाव का चिंतन करेगा वो उसको प्राप्त करेगा। इसलिए जो मेरा चिंतन करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, लेकिन जो मुझको छोड़कर किसी और का चिंतन करेगा तो वो उसको प्राप्त करेगा। जैसे कि आपके सामने भरत महाराज का एग्जाम्पल है, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं ना, प्रभुपाद कहते हैं महाराज भरत ऑल्दो अ ग्रेट पर्सनालिटी थॉट ऑफ अ डियर एट द एंड ऑफ हिज लाइफ एंड सो इन हिज नेक्स्ट लाइफ ही वॉज ट्रांसफर्ड इन टू द बॉडी ऑफ अ डियर ऑल्दो एज अ डियर ही रिमेम्बर his past activities. He had to accept that animal body. Of course, one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the moment of death. So this life creates one's next life. If in one's present life one lives in the mode of goodness and always think of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. That will help one to transfer to the transcendental nature of Krishna. If one is transcendentally absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, spiritual, not material. बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने यहाँ पर कह दिया, जो आप चिंतन करोगे वो ही आप प्राप्त करोगे. सो सिंपल. भरत महाराज का एग्जांपल दिया. भरत महाराज का क्या था, डियर में आकर्षण, हिरण में आकर्षण हो गया था. तो हिरण में आकर्षण होने से क्या हुआ कि मृत्यु के समय पर वो हिरण का चिंतन करके मर गया. इतना याद, इतना सब आगे पहुंच गए थे भक्ति मार्ग में, लेकिन हिरण का चिंतन में फंस गया. कुछ लोग को पेट्स रखने की आदत होती है. अमेरिका में ज्यादा है, विदेश में ज्यादा है, इंडिया में अभी भी है, इतना नहीं है, लेकिन पेट्स, पालतू कुत्ता रखते हैं, पालतू बिल्ली रखते हैं. तो उन लोग का उद्देश्य क्या होता है कि लव, प्रेम जो है और सर्विस जो है, प्रेम और सेवा, इसका एक्सचेंज करने वाला कोई प्रॉपर पात्र नहीं मिलता उनको, इसलिए कुत्ता रखते हैं या पेट रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, ताकि उसको, उसके प्रति आप पूरा प्रेम, उसको सेवा सब कुछ कर पाओ. इट्स फैशन नाउ ऐसे, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं आदमी जिसको प्रेम कर पाए. क्या करेगा बेचारा, भिखारी है, कोई पात्र है नहीं उसके पास कि इसको प्रेम दे पाए. तो पेट रखने से क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय पर उस कुत्ते या बिल्ली का चिंतन करेगा, तो उसको बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम के सीधा कुत्ते के शरीर में डाला जाएगा, सीधा कुत्ते के शरीर में या बिल्ली के शरीर में या व्हाटएवर. अगर कोई व्यक्ति निरंतर किसी स्त्री का चिंतन करता है, स्त्री का चिंतन करते 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 शरीर छोड़ दिया, तो उसको फिर उसके वो स्त्री का जो गति है वो उसको मिलेगा, वो शरीर उसका जो है वो ऐसा शरीर मिलेगा उसको. स्त्री का शरीर बड़ा अच्छा करता तो स्त्री बन जाए, स्त्री का पुरुष का शरीर बड़ा अच्छा करता तो पुरुष बन जाए दूसरे शरीर में. तो कोई कोई व्यक्ति बहुत बहुत समय पर उसको बहुत मांस खाने का इच्छा है, वो पूरा समय मांस खाता रहता है, तो भगवान उसको बोले यू आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन, पुनर्मुषि को भवे. तो फिर उसको शेर बाघ ऐसा कुछ बना देते हैं, जिसको हमेशा कपड़े, बिना कपड़े रहने का शौक है आजकल, है ना, बॉयज एंड गर्ल्स क्या करते हैं, कपड़े कपड़े नहीं चाहिए उनको बस. जिनको, जिन लोग को नंगे रहने का शौक है, तो उनको वृक्ष बना दिया जाता है, तुम वृक्ष बन जाओ, नंगा रहो पूरा दिन, खड़े रहो बाहर. तो इस तरह से आप, हमारा जो भी कर्म हम करते हैं, वो सारे कर्मों के आधार पर हमारा वो सेंसेक्स ऊपर नीचे होता रहता है. जैसे होता है, अभी आज मैंने ये कर्म किया तो समझ, जैसे पहले जब हम छोटे थे तो कुछ गेम आती थी, और यू मैट सीन समथिंग, मीन्स आप कुछ भी करते हो ना, तो वो एक जैसे समझ लो एक फेस होता है, तो एक इमेजिनरी फेस होती है, लेकिन वो फेस चेंज होती रहेगी आपकी एक्टिविटीज के अनुसार. आपने ये कार्य किया तो फेस चेंज हो गया, आपने ये कार्य किया तो फेस चेंज हो गया, ये कार्य किया तो फेस चेंज हो गया, ये कार्य किया तो यू नो ये भ्रमर यहाँ पर इधर होने के बदले इधर होके गई, आपने ये कार्य किया तो नाक ऐसे लंबा होने के बदले अंदर चला गया, लाइक दैट. एक सैंपल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल. तो आप जो भी करते हो रोज एवरी डे, फिर मनुष्य का शरीर था, फिर कुत्ते का शरीर आया, कुत्ते का फेस, फिर बिल्ली का फेस, फिर बंदर का फेस, कौन सा फिट हो रहा है इसको, यू नो ये कौन सा, आप कौन सी, कौन सा सेट हो रहा है परफेक्ट, यू नो. तो इस तरह से 84 लाख योनि में से और मनुष्य में अलग अलग प्रकार के, धनवान, गरीब, फिर एक कभी काला एकदम अफ्रीकन, यू नो, और कभी गोरा गोरा यूरोपियन, यू नो. तो ऐसा अलग 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 प्रकार के शरीर का पूरा निर्माण होता है आपकी थ्रू आउट द लाइफ. आपकी लाइफ जब तक होती है चलता 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 जब एंड ऑफ द मोमेंट मृत्यु समय आ जाता है तब लकी ड्रॉ क्या मिला आपको, बोले ये शरीर आया है प्रभु तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे जो कर्म किए थे इसके परिणाम तुम्हारे ये शरीर आया है, ये फोटो देखो, नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें ऐसा शरीर प्राप्त होने वाला है लाइक दिस। तो ये हमारे प्रभुपाद कहते थे कि कभी कभी आप दिन में पर्वत देखते हो और सोना देखते हो तो ये संभव है कि रात के समय पे आपको सोने का पर्वत दिखेगा सपने में, राइट। तो सेम वे अगर आप पूरा समय किसी चीज को लेकर के, अगर आप पूरा समय ट्रेन में जर्नी किया है, पूरा दिन आपने कुछ भी किया है, एनीथिंग, एक ही एक्टिविटी को किया है, रात को वही आएगा, वही सपने में है। सब्जी वाला होता है रात में चिल्लाता रहता है सब्जी ले लो सब्जी ले लो,
पिक्चर देखते तो रात को भूत ही दिखते।
हाँ, आपको जो ऐसी कोई डरावनी चीज देख लेते हो तो रात को ऐसी डरावनी चीज आपको रात को आती है। इसी तरह से पूरे दिन में जो रात करते हो रात को याद आता है, इस तरह से पूरे लाइफ में जो करते हो आपको अंत समय पे याद आता है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अंत समय में क्या याद आता है। अंत समय में व्यक्ति को कैसी कैसी चीज याद आती है जो आज आप याद नहीं रखते, आपको याद नहीं है आज, जैसे आप 5 साल के आयु में थे और आपने क्या किया था ये आपको आज याद नहीं है, लेकिन उस समय याद आएगा आपको कि 5 साल के समय पे आपने क्या किया था, वो याद आएगा आपको। इसको समझना बड़ा आसान है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आपके करीब के कोई रिश्तेदार शरीर त्याग किए कभी आपने, कोई शरीर करीब का रिश्तेदार, नेक्स्ट फैमिली मेंबर, जैसे समझ लो अपने खुद का फैमिली में या नियर बाय किसने शरीर त्याग किया, तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको उनसे जुड़ी हुई सारी स्मृतियां याद आती है कि नहीं, है ना। ऐसी ऐसी घटना याद आ जाती है कि जो आप अभी भूल गए हो, और वो समय आपको सब कुछ याद आ जाता है, बचपन में जवानी में क्या क्या किया था सब कुछ याद आ जाता है। ये तो दूसरे का शरीर त्याग किया, हमारा शरीर त्याग नहीं हुआ है, दूसरे का शरीर त्याग किया तभी भी हमको ये सब याद आता है। तो जब हमारा शरीर त्याग करेंगे तो सारी फिल्म हमारे सामने से गुजरेगी, ऐसे पूरा मूवी निकलेगा आपके सामने लाइफ का शॉर्ट ट्रेलर। तो फिर वो क्या होगा, इसके आधार पर आपको दूसरा शरीर प्राप्त होगा। यमियम वापिस मान भावम श्री जयंती कलेवरम तम तो मैं वही थे कौन थे सदा भाव भाविता। सो ये एक्सपीरियंस जो होता है वो बड़ा हैवी होता है, मृत्यु का बड़ा भयानक होता है। और इसलिए दूसरा एक एग्जांपल प्रभुपाद वो अजामिल का भी बताया था। अजामिल ने कौन सा सो अजामिल जो है उसने अंत समय पे भगवान का स्मरण किया और परिणाम क्या आया, उसको भगवान के धाम में जाने का अवसर मिला। लेकिन ऐसा अजामिल जैसा सब नहीं कर पाते। अगर कोई ये सोचता है कि मैं रात को जीवन के अंत टाइम पे कर लेंगे स्मरण कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान को चिंता नहीं करना है ना, तो कोई बात नहीं, वो कर लेंगे सब। चार बच्चों का नाम बदल लिया था उसने, एक एग्जांपल देता है ना, आपको पता है वो एग्जांपल, एक व्यक्ति ने अपने चारों पुत्रों का नाम बदल दिया था। संत ने कहा कि देखो तुम मृत्यु के समय पे भूल जाओगे भगवान को, अभी करो। तो उसने बोला कि नहीं मैं करूंगा, तो उसने चारों का नाम बदल दिया, लेकिन वो लगा रहा पूरा लाइफ बिजनेस में। तो परिणाम क्या आया कि जब वो मरने को आया तो उस चारों पुत्र को बुलाया भी सही, वासुदेव शंकर स्वामी प्रद्युम्न अनिरुद्ध राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको बुलाया, चारों के चारों आ गए उसके सामने, बुलाया तो आ गए, चारों के चारों आने के बाद उसने ऐसा बोला कि सब लोग इधर आ गए तो फिर मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, है ना। बस उसी समय पर उसका मृत्यु आ गया, क्योंकि उसकी चेतना में क्या था, बिजनेस था। तो आपकी इसलिए प्रभुपाद इसको कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्सियसनेस बताया, चेतना, कृष्ण चेतना, ये कॉन्सियसनेस, ये एक चेतनात्मक है, आपकी चेतना किस चीज पे है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कृष्ण चेतना में होना बहुत आवश्यक है। आप पूरा समय अगर कृष्ण का चिंतन करते हो, इसका प्रैक्टिस करते हो, तो कम से कम मृत्यु के समय पे आपको भगवान याद आ सके। अगर किसी को मृत्यु के समय पे भगवान याद नहीं आते, अगर उसने पूरा लाइफ भगवान का सेवा किया है, तो भगवान फिर भगवद गीता का श्लोक खोल के बैठ नहीं जाते, देखो क्या लिखा है इसमें, अंतकाल है चमा में वस, तुमने मेरा चिंतन नहीं किया, सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान बहुत दयालु है। अगर आपने पूरा लाइफ भगवान का सेवा किया है, लेकिन अंतकाल में आप किसी कारण से भगवान का चिंतन करने से चूक गए, आप नहीं स्मरण कर पाए, तभी भी भगवान आपको अपने धाम वापस ले लेते, तभी भी ले लेते, क्यों? क्योंकि तुमने पूरा लाइफ उनको दिया था, इसलिए। तो भगवान भाव देखते हैं, क्रियाओं कर्मों को नहीं देखते। सो इस तरह से परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल भी प्रभुपाद ने दिया था कि परीक्षित महाराज इतने अच्छे महात्मा थे, ऐसे भक्त थे कि जिन्होंने ऐसा कहा कि सांप तक्षक नाग उनको मारेगा, मृत्यु होगी, तो बोले तक्षक नाग भले आकर के मुझे मारे, आप लोग भगवान का जो गुणगान है वो बंद मत करना, श्रीमद् भागवत का आप बोलते रहिए, आप चर्चा करते रहिए, क्योंकि मैं ये सुनते सुनते चिंतन करते करते शरीर त्याग करना चाहता हूं। इस तरह से एक डीप इम्प्रेशन कृष्ण की हमारे हृदय में होनी चाहिए, हमारे हृदय में एक डीप छवि कृष्ण का गहराई से अंदर रहनी चाहिए, गहराई से। जैसे कभी क्या होता है कि आपका समझ लो कि आपको कोई इतना बड़ा कष्ट आ गया अचानक, तो आपके मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? अगर कोई भक्त नहीं है तो माँ बापा ये सब बताएगा, लेकिन जो भक्त होता है उसके मुख से सबसे पहले हरि का नाम आएगा, कृष्ण का नाम आएगा सबसे पहले, और वो नाम उसको ऑटोमेटिक आया था, उसने याद करके बोला नहीं था, वो ऑटोमेटिकली उसको उसको भी नहीं पता कि वो क्यों बोला ये कृष्ण का नाम, ऐसा डीप इम्प्रेशन को कृष्ण को भूल ही नहीं सकता वो किसी भी क्षण पर, है ना। कभी बहुत ज्यादा संकट आ जाती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो स्वाभाविक रूप से आपका मन सीधा कृष्ण के चरण में चला जाता है, हे कृष्ण रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, है ना, स्वाभाविक। तो इस प्रकार का डीप गहराई से हमारे हृदय में कृष्ण का स्मरण स्थापित करना ये बहुत ही आवश्यक है। सो
दर्शन भी ध्यान से करनी चाहिए,
यस, भगवान के विग्रह का चिंतन करते हो तभी भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सो हम छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपको कि दो चार प्रश्न है, लेट अस टॉक ऑन दैट। सबसे पहले तो कि आपको कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है कि आप कभी स्मशान में गए हो, तो स्मशान में पर्टिकुलर उस समय स्मशान में होते हो जब उस समय आपको किस प्रकार के विचार आते हैं जनरली, क्या आप साफ साफ आप तो पहले बोल दोगे स्मशान वैराग्य आता है, अब बोलोगे ऐसा, लेकिन इन शॉर्ट एक दो लाइन में अगर आप बताना चाहते हो तो आपको किस प्रकार के विचार आते हैं, या आए हैं कभी, या आए थे, एक बार गए थे, दो बार गए थे, कभी तो आए थे, ऐसा कुछ याद है आपको? अगर याद है तो एक लाइन में दो लाइन में बता सकते हो, ज्यादा लंबा नहीं सुनना है क्योंकि हमारे पास समय का कमी है, बहुत सारे प्रश्न है, इसलिए एक प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं।
जब मैं स्मशान में गया था तो उनकी बॉडी चलती हुआ दिख रहा था, तो ऐसा लगा था कि ये आत्मा अभी परमात्मा में आसमान की, उसने जो कर्म किया उसका फल को भगवान अच्छा दे,
एक विचार ये आता है, यस, फिर दूसरा कोई विचार?
मेरे को भी मरना ही है, जैसे अभी ये उनका डेथ हुआ है तो मेरा भी अभी टाइम आने वाला है, तो मतलब एक तरह का होता है कि व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए?
यस, सही बात है। फिर और बात,
मेरे मम्मी के पिताजी है वो स्मशान में गए थे, तो हम वेकेशन में मामा के घर रुकने जाते थे,
yes.
तो वही सब याद आता था कि दादाजी ने हमको ये किला ये
करे। अच्छा, वो उनके उनके साथ जुड़ी हुई सारी स्मृतियाँ। यस यस,
मैं कहीं जाता हूँ नाम नहीं जाता,
अच्छा
सोचता नहीं।
अच्छा, अच्छी बात है, वेरी गुड। आप कुछ कह रहे थे?
ऐसा कभी भी किसी का डेट देखते हैं तो एक बात तो याद आ ही जाती है कि ये क्या लेके गए, जो लेके जाने का है उसी उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं होता, तो हमें ये बात को थोड़ा ध्यान से सीरियसली लेना चाहिए, हम क्या लेके जा सकते हैं।
यस, वेरी गुड। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछते, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हाँ जी,
सोचते हैं उसी टाइम प्रश्न सोचा था कि यह जो प्रश्न है वो सब कुछ इतना घनाढ्य था, सब कुछ है लेकिन वो कुछ लेकर नहीं गया, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं।
सही बात,
हमें भी इसी दिन सब कुछ छोड़ के जाना है, तो हमें इसके लिए मोह नहीं रखना है।
यस,
ये इन्होंने जो बताया इससे एक मेरे मैंने वो सेंटेंस बोला था, माने चौक में है बहुत बड़े चौकसी सोने के बिस्केट्स बनाते हैं,
okay.
तो वो कुछ 45 इयर्स के ही थे और एक्सपायर हो गए, तो उनकी डेथ हुई तो उनका घर में गया था, तो मैंने किसी को बोला था कि मैं नॉर्मली सभी की लाइफ है ना पेट्रोल भराने में चली जाती है, बराबर उनका इंजिन पावरफुल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जिसके पास पेट्रोल के पूरे टंक होते हैं उनका इंजिन फेल हो जाता है।
सही बात है, यस, नहीं बोल। एक प्रश्न और है जिसको आप माताएं भी इसका उत्तर दे सकते हैं, मैं आपको इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपका ये अनुभव होगा नहीं, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन कभी कभी कुछ भक्त ऐसा कहते हैं, सुना है, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कभी कुछ भक्त ऐसा कहते हैं, आप समझ ना हम भक्त की बात कर रहे हैं, कभी कोई भक्त ऐसा कहते हैं कि मेरा भक्ति बड़ा मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है, मैं शरीर से भी बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ हो गया हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए क्योंकि शरीर भी कमजोर हो गया, शरीर में कुछ अब कुछ कर नहीं पाता शरीर, तो इस प्रकार का अब मैं भगवान को ये प्रार्थना करता हूँ कि हे कृष्ण कृपा करके अब मुझे ले लो, मेरा शरीर समाप्त कर दो, वो भक्त ऐसा कह रहे हैं, आप उस भक्त को क्या करोगे?
मैं तो बाबू जी यही कहूंगा कि जब तक सांसें चल रही है नाम जपते रहो, अपने आप तो अपने आप ही चले जाओगे, तो बुलाने ना बुलाने से क्या फायदा, इतना टाइम मिला उसका सदुपयोग करो।
अच्छी बात है, गुड। और भक्त बताइए।
अगर वो भक्त है तो उसको मतलब ये विचार ही नहीं आना चाहिए, और विचार आता है तो हम उसको ऐसे कहते हैं कि आपने तो पूरी लाइफ भक्ति की है तो फिर अभी भक्ति छोड़नी नहीं है, चाहे जो
वो भक्ति तो नहीं छोड़ना चाहता, वो तो सोच रहा है कि कृष्ण मुझे अब शरीर छुड़वा दे क्योंकि मैं इसको अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पेन, मेरा लाइफ पूरा बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए, तो मेरे शरीर अब छुड़वा दे भगवान तो अच्छा, तो क्या कहेंगे आप? मीन्स वो इन शॉर्ट वो शरीर से थक करके मृत्यु की कामना कर रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे?
उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो कष्ट हो रहा है शरीर को हो रहा है आत्मा को नहीं हो रहा है, तो भगवान का चिंतन या बढ़ा देना चाहिए और भगवान जब भी बुलाए तब उसको जाना चाहिए।
फिर
ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए कि भगवान मुझे ले लो, जब भी इस वक्त आएगा तो भगवान ले लेंगे।
फिर अगर वो ऐसा कहेगा कि कुलशेखर महाराज ने भी तो ऐसा कहा था, अगर वो ऐसा कहे फिर तो आप मना नहीं कर सकते ना, तो क्या कहोगे फिर आप?
शरीर की पीड़ा की वजह से अगर वो शरीर छोड़ना चाहता है और भगवान को ये प्रार्थना करता है तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि चाहे कैसी भी कंडीशन हो उसमें दृढ़ विश्वास से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि जितना शरीर को और ध्यान हम देंगे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ध्यान भगवान से हट गया है। जब तक भगवान की और ध्यान है तो फिर शरीर में चाहे कितना भी दर्द हो वो एहसास भगवान ही नहीं करने
देंगे। अच्छा तरीका है सोचने का। और कोई भक्त अपना विचार शेयर करना चाहते?
पहले तो उनको बोलना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा के स्तर पे सोचना चाहिए कि हमारे आगे के जो कर्म है उनका जो भुगतना बाकी है वो सब भी खत्म हो जाएगा, बाद में आपको शरीर छूटेगा। आप आत्मा के स्तर पे सोचिए, शरीर को शरीर नहीं है, आत्मा के स्तर पे सोचिए।
ओके,
क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, वो भक्त अपने आप शरीर नहीं छोड़ना चाहता है, वो भगवान जी से प्रार्थना कर रहा है कि अब शरीर जैसे जैसे मतलब ज्यादा फटे कपड़े हो गए हैं, तो जिस मालिक ने पहनाए हैं उसी से बोलता है भाई उतार दो, खुद उतार नहीं सकता, तो उस भाव में कोई बुराई नहीं, बुराई कोई नहीं है, और उसकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती भी होती, तो उसको यही मैं तो वही कहूंगा कि नाम जपने के साथ आप प्रार्थना करना चाहो करो, क्योंकि आपके भगवान जी हैं, आप जैसी चाहो प्रार्थना करो।
यस,
लेकिन साथ में ये जरूर रखो कि जब भगवान ने प्रकृति के कुछ नियम बनाए हैं, आपकी एक लाइफ स्पैन बनाया है, तो अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप उनके मतलब उनके नियमों को उन्हें खुद तोड़ने को मत करो।
ओके, ये भी अच्छा विचार, वेरी नाइस, कि जो आपका जो
नियम दिया है, जो आपको जो भी कुछ दिया है उसको करो,
उसको आप एक्सेप्ट कर लो,
प्रार्थना करो, नाम जपो।
यस,
और क्योंकि अपने परंपरा में यही कहते हैं कि अपने भक्त कभी वो इच्छा नहीं करते जिससे भगवान जी को कोई भी नियम अपने बदलने पड़े,
सही बात,
या उनको सेवा के लिए आना पड़े, परंपरा में यही कहते हैं।
सही बात है। यस, आप कुछ कह रहे?
नॉर्मली ये जो मैंने पहला जो जवाब दिया वो टोटली सरेंडरिंग था, लेकिन ये दूसरा एक थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ऐसा है कि एक और भाव हो सकता है भक्त का, वो खुद की ऐसी इच्छा होती है कि वो ऐसे शरीर जो मतलब पूरा मतलब जीर्ण हो गया है उससे वो भगवान की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वो दूसरा शरीर मांगता है कि ऐसा सशक्त शरीर मिले ताकि वो पूरी पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा
सके। सही बात है।
तो ये भी एक भगवान की सेवा के लिए ही है, क्योंकि पुराना हो गया तो उससे बराबर नहीं हो रही है, तो नया मिल जाता तो उससे और अच्छी तरह से कर सकता है। एक अच्छा भाव है।
गुरु जी, यहाँ पे मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ महाभारत, कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और भीष्म पितामह तो बाणों पे लेटे हुए थे, तो जब भगवान श्री कृष्ण के सामने आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब तो कार्य संपन्न हो गया, तो मैं जाने की आपसे आज्ञा मांगता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अभी इस समय शरीरधारियों में जो भी मानव देह में है आपसे ज्यादा कोई वयोवृद्ध नहीं है, आपसे ज्यादा अनुभव वृद्ध भी नहीं है, ज्ञान वृद्ध भी नहीं है आपसे, और आप तपस्वी तो हैं, तो अगर आप बिना अपने अनुभव बांटे चले जाओगे तो मानवता पे बड़ा अपकार होगा। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ समर्थ सामने खड़े हो तो मैं क्या कहूंगा आपके सामने। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देखो मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम आप ही कहोगे सब कुछ।
yes.
तो उनके उस भक्त को पूरे शांति पर्व महाभारत काल में उन्होंने पूरा धर्म भक्ति राजनीति हर एक ऊपर पूरा उपदेश देते रहे, क्यों? क्योंकि भगवान जी की वो इच्छा थी, इतने कष्टों के
उपरांत।
तो प्रभु जी इतने कष्टों के उपरांत भी करते रहे, उस समय उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भगवान जी बहुत हो गया आप चलने सामने खड़े थे। तो भक्त को ये भी भाव रखना चाहिए कि हो सकता है भगवान जी ने मतलब थोड़ा और कुछ कार्य कराने शेष बचाओ।
एक बड़ा अच्छा विचार है कि भगवान आपसे कुछ करवाना चाहते हो तो आपको शरणागत होना चाहिए, आपके जाने का समय भी वही डिसाइड करेंगे कि आपको कब जाना चाहिए। अगर समझ लो कि आप कष्ट में हो तो क्या हम ये समझते हैं कि भगवान को इस बात का पता नहीं है कि हम कष्ट में हैं, तो क्या हम ये समझते हैं कि भगवान को हमारी इन कष्टमय सिचुएशन से, दुख वाला जो सिचुएशन है, उनसे उनको कोई किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त हो रहा है? नहीं। अर्थात भगवान के जो भक्त होते हैं वो सारी चीजों के लिए कृष्ण से शरणागत है, आधारित है। जब वो चाहेंगे, जिस तरह से वो चाहेंगे, उस तरह से मृत्यु होगा। अगर वो चाहते हैं कि मेरे सिर के ऊपर एयरप्लेन से कोई बम फेंकेगा और बम फट के मेरा मृत्यु होगा, तो ऐसे मृत्यु होगा। अगर कोई चाहते हैं कि मैं किसी रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जाता हूँ, तो मेरी मृत्यु ऐसे होगी। और मेरी मृत्यु अगर हो सकता है कि किसी अस्पताल में डॉक्टरों के बीच में, या फिर घर में किसी प्रकार की सडन डेथ, किसी भी प्रकार से मृत्यु प्राप्त होती है, उसका सिलेक्शन भगवान के हाथों में दे देता है। तो ये अच्छा विचार है। एक्चुअली इस प्रकार का ये मैंने प्रश्न आपको इसलिए पूछा कि कभी कभी आवश्यकता होती है कि आपको गाइड करना पड़ता है कुछ लोगों को। अभी एक दूसरा प्रश्न ये है कि अगर समझ लो कि भगवान ना करे, लेकिन ये तो हम केवल प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, अभी इसी समय आपको मृत्यु सामने आया, इसी समय समझ लो कि आपके सामने अभी मृत्यु है और आप शरीर छोड़ने ही वाले हो, कुछ समय आपको कुछ नहीं पता था, घर से निकले, ऑफिस से निकले, कुछ नहीं पता था कि आज ऐसा होने वाला है मेरे साथ और मेरा मृत्यु आने वाला है, ऐसा आप कुछ नहीं पता था, और अचानक आपके सामने इस प्रकार से आ गया मृत्यु, तो क्या आप इंटरनली अंदर से तैयार हो इसको स्वीकार करने के लिए?
बस हरे कृष्णा निकले,
खाली समय में भगवान का नाम निकले,
एक बार हरे कृष्णा किया बस चल गया।
आज तो गुरु महाराज ने एक अच्छा सेंटेंस बोला, जा रहे थे आपको प्रभुपाद जी ने बोला था, तो पहली पदयात्रा निकाली थी उन्होंने, तब नॉर्मली कहते जा रहे थे तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला था जा रहे थे तारे कहो हरे कृष्ण उपदेश, यही करना है।
सही बात है। तो इसलिए लेकिन ये प्रश्न हम आपको पूछा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंसर में तो जनरली हम बोल देते, लेकिन जब सही में हमारे सामने मृत्यु आती है तो अंदर से आत्मा ही इसका विरोध करता है, नहीं 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 मृत्यु नहीं, ऐसे मैं मर नहीं सकता। यहाँ तक कि छोटा बच्चा होता है, एकदम छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, छोटा बच्चा भी मृत्यु को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। अब उसको थोड़ा सा भय लगेगा ना बच्चे को, भाग करके माँ के पास चला जाएगा थोड़ा भय होने पर भी। इसलिए जीव जो है शरीरधारी, उसको मृत्यु पसंद ही नहीं है। अच्छा दूसरा एक प्रश्न ये है कि क्या आत्महत्या करने से कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं?
लेकिन आत्महत्या से बल जी मिले ये संबंध।
अच्छा
भगवान ने जो समय दिया है उसके उसी समय मुक्ति होनी चाहिए,
जो सजा जिस समय तक भोगतनी है वो भोगे बिना उधर भागने की कोशिश करता तो नेचर है, उसको कृष्ण तो मिल ही नहीं सकते, लेकिन उसका दुगना फल उसको भोगतना पड़े सजा हो सकता
है। वैसे तो हम सभी आत्महत्या ही कर रहे हैं, क्योंकि आत्महत्या मतलब आत्मा की हत्या। अगर हम शरीर को बिना कृष्ण भक्ति के लगाए त्यागते हैं तो आत्महत्या ही है।
यस यस, वो आध्यात्मिक आत्महत्या है, स्पिरिचुअल आत्महत्या। अगर कोई भक्त भक्त आत्महत्या करे, करेगा नहीं जनरली, तो अगर कोई करे तो क्या उसको कृष्ण मिलेंगे?
इसमें कुछ कह
नहीं
इसलिए नहीं कह सकते
भगवान के ऊपर ही है
इसलिए नहीं कह सकते
ऐसा कुछ
ने कुछ ऐसा मुझे तो पता है कि ऐसा हुआ है
जी गोविंद के में कोई नियम लागू नहीं करते एक भी नियम नहीं लगता
कृष्ण तो सारे नियमों से पर है ऑफ कोर्स
इसलिए उनके तरफ एक भी नियम नहीं लगता
लेकिन अगर वो ऐसा सोचे कोई भक्त क्योंकि मैं अभी कृष्ण सेवा कर रहा हूँ तो अभी मैं आत्महत्या कर लेता हूँ तो वो उचित विचार है या नहीं
विचार उचित
नहीं
क्योंकि सेवा का जितना मौका मिले उतने का
भगवान ने
ये बहुत आवश्यक बात है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना आपके पास सामने ऑप्शन ए है और इसी शरीर में कठिनाइयों के साथ शरीर की अपनी कठिनाइयों के साथ भगवान की सेवा करते रहना यह है ऑप्शन बी
बेस्ट ऑप्शन है
तो कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए आप समझे एक है आपको भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको जन्म मृत्यु के चक्र से अभी मैं आपको मुक्त कर रहा हूँ चलो आज क्या तारीख हो गया 26 मार्च है 2019 मैं आपको मुक्त कर रहा हूँ चलो जन्म मृत्यु के चक्र से आपको मुक्त कर रहा हूँ और दूसरा ऑप्शन भगवान ने कहा कि तुम्हारा आयुष्य अभी भी शेष है अगर तुम चाहो तो वो आयुष्य खत्म करके मेरे पास आ सकते हो तो आप कौन सा स्वीकार करेंगे
नहीं आयुष के दौरान प्रभु जी अगर वो कहें कि सेवा का मौका मिलता रहेगा तो ठीक
हाँ सेवा तो करें आप अभी सेवा कर रहे हो उसको मना नहीं करेंगे तो जो आप अभी कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर रहा है कराएंगे आपको
कंटिन्यू करते रहेंगे
लेकिन आप भगवान ने ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहो तो अभी मैं आपको जन्मृत्यु के चक्कर से निकाल लूंगा एक ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन कि आपका आयुष्य कुछ बचा है वो समाप्त करके तुम मेरे पास आ सकते हो दोनों में से कौन सा
यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है अगर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल के और अपनी सेवा में लगा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर ऑप्शन केवल जन्म मृत्यु से चक्कर से हटा दिया वो ठीक नहीं है अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से हटाए तो अपनी सेवा में ले लें तो बेस्ट ऑप्शन वो हुआ और अगर केवल जन्म मृत्यु से छोड़ के कर दिया तो फिर बेस्ट ऑप्शन भी हुआ
तो फिर प्रभु जी उसे
उसको वैकुंठ जाना होगा तो विष्णु दूत आएंगे और उसको गोलोक वृंदावन जाना है तो कृष्ण के दूत आएंगे लेकिन यमदूत नहीं आएंगे
जन्म मृत्यु के चक्कर से निकला तो हो सकता है कि ब्रह्म ज्योति में लटक जाए और कहीं
सही बात है आपका सही बात है
जन्म मृत्यु
तो यमदूत तो नहीं आएंगे उसके पास ऑब्वियस यमदूत तो केवल कर्म के परिणाम भुगतने वाले लोग के पास आता है बाकी भगवान के भक्तों को यमदूत का दर्शन हो तो डर जाते हैं ना ये लोग बेचारे आ नहीं पाते ये कंठी को देख कर गए डर जाते हैं दूर रहते हैं वो लोग मना किया है यमराज ने मना किया है छुआ तो मरेगा छुआने छुने का नहीं उनको यस अभी जस्ट इसमें एक छोटा सा एडिशन में करना चाहता हूँ ऑप्शन ए ऑप्शन बी में आप जब बात कर रहे थे उसी में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अगर भगवान आपको ये कहे कि आपको जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार करके मैं तुम्हें अपनी सेवा में लगाऊंगा गोलोक वृंदावन में है ना गोवर्धन या किसी भी वृंदावन में किसी भी जगह या वैकुंठ में जैसा आपका इच्छा मैं आपको अपनी सेवा में लगाऊंगा एक ऑप्शन ये है दूसरा ऑप्शन कि आप यहाँ पर रहो जब तक आपका आयुष्य बाकी है उसके बाद फिर वापस मैं आपको अपनी सेवा में लगाऊंगा लेकिन यहाँ पर रहने पर आपको एक कार्य करने का सुविधा मिलेगा जो भगवान बताते कि मैं आपको ये सुविधा देता हूँ कौन सा सुविधा कौन सा कार्य
लोगों का उद्धार करने का भक्तों का या उनके जनों का उद्धार करने का
तो आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए
ऑप्शन
आप समझे
उसमें स्वार्थ होगा पहले
आप समझे तो ये बी ऑप्शन बेस्ट है क्योंकि इसमें आप दूसरों का हित कर सकते हो दूसरों का हेल्प कर सकते हो लेकिन इसके कारण आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा
तो
आप समझे ना सारी गेम को कि मैं क्या पूछ रहा था इसका कहने का तात्पर्य यही था कि अगर कृष्णा आपको अभी अपने धाम में वापस लेकर के अपनी सेवा में लगाना चाहे, तभी भी भक्त भगवान का प्रचार कार्य छोड़ करके कहीं जाना चाहता नहीं। ये है भक्त का स्पेशल क्वालिटी, इसलिए वो भक्त भगवान को अधिक प्रिय है, इसलिए वो ज्यादा प्रिय है कि उसके पास ऑप्शन था कि वो मेरे पास आ सकता था, लेकिन फिर भी वो आया नहीं, वो मेरा सेवा करना चाहे। दिस इज अ स्पेशल क्वालिटी। भगवान जैसे कोई बताए, जैसे भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा है आत्महत्या करने वाले व्यक्ति भूत बनता है। व्यक्ति भूत बनता है, घोष्ट, क्योंकि उसके पास नया शरीर लेने का जो टाइम है वो अभी आया नहीं, और जो शरीर था वो उसने हटा दिया, तभी बिना शरीर वाला क्या करेगा, भूत ही बनेगा, तो तब तक वो भूत बनता है। इसलिए प्रभुपाद मना किए कि आत्महत्या करने से व्यक्ति कोष्ठ बनता है, इसे वो नहीं मिलना चाहिए।
भक्तों के लिए क्या,
सबसे पहले तो भक्त ऐसा करेगा नहीं, लेकिन भक्त अगर अज्ञानता से ऐसा करेगा भी तो उसको दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ेगा, उसको भगवत धाम नहीं
मिलेगा,
नहीं उसको साइकिल से जाना पड़ेगा, वही साइकिल से जाना पड़ेगा। भगवान स्वतंत्र है, नियम तोड़ सकते हैं, भगवान भी नियम को तोड़ सकते हैं, लेकिन वो भक्त जो है वो अगर ये जो डिसीजन लिया आत्महत्या करने का, ये डिसीजन उसका अपना था और वो निजी स्वार्थ से प्रेरित था, इसके कारण वो भक्ति नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन उसका आत्महत्या छोटा हरिदास जैसा था तो अलग बात है। जैसे सनातन गोस्वामी ने, मुरारी गुप्ता ने जो आत्महत्या का विचार किया था, वो हालांकि महाप्रभु तो उसको भी मना कर दिए थे। सनातन गोस्वामी आत्महत्या का विचार किया तो महाप्रभु जाकर के कहा, एक तो तुम किस प्रकार के भक्त हो, पहले तो अपना शरीर मुझे दिया, शरणागत कर दिया पूरा शरीर, अब ये शरीर को क्या करना है वो मेरा अधिकार है या तुम्हारा अधिकार है, तो मैं तय करूंगा ना कि शरीर का मुझे क्या करना है, तुम कैसे तय कर सकते हो इस शरीर का तुम्हें क्या करना है। भगवान ने ऐसा सनातन गोस्वामी को बोला, इसलिए आत्महत्या तुम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मेरा शरीर है, ये शरीर तुमने दे दिया मुझे तो अब मेरा हो गया, इसको इसका अधिकार तुम वापिस कैसे ले सकते हो, दी हुई चीज को वापिस कैसे ले सकते हो। और मुरारी गुप्त को भी ऐसा कहा था, मुरारी गुप्त बोला कि मैं गुरु का अवज्ञा नहीं कर सकता और राम की भक्ति नहीं छोड़ सकता, तो क्या करूं, अब शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, तो महाप्रभु ने उसको मना कर दिया, नहीं 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 ये सब पागलपन मत करो, तुम राम की भक्ति करते रहो, यही तुम्हारा, यही स्वरूप है तुम्हारा, तुम हनुमान हो, राइट। इसलिए छोटा हरिदास के केस में अलग था, छोटा हरिदास को त्रिवेणी संगम में जाकर के उसने शरीर त्याग कर दिया था, तो इसलिए फिर भी महाप्रभु उसका उद्धार किया, और उसको जब भी महाप्रभु अकेले होते तो वो आकर के कीर्तन करता था छोटा हरिदास। लेकिन ये पार्षद लोग है, उनका तो भगवान कृपा करते है, लेकिन किसी साधारण व्यक्ति को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। एक बार महाप्रभु बताए कि आत्महत्या करने से अगर कृष्ण प्राप्त होते हो तो मैं रोज आत्महत्या करूं, डेली, अगर इस तरह से कृष्ण प्राप्त होते हैं तो। ओके,
इसका मतलब तो जी कि आत्महत्या से नहीं प्राप्त होते,
नहीं होते।
जो तुलसी माला मतलब भक्तों के लिए होता है उसी को कृष्ण मिल सकते हैं, या आम लोग होते हैं मतलब जो कृष्ण को इतना बहुत नॉर्मल पूजा करते हैं और लास्ट में जब भरते हैं तब तुलसी पत्र है, तुलसी की माला है, सब पहनाते हैं,
ठीक है, पवित्र करते हैं उसको, अंत में सब उसको करवाते हैं सब चीजें, तो इससे वो पवित्र होता है तो कम से कम उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकता है, उसको 84 लाख में घूमना नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन बहुत जघन्य कार्य किए हैं, बहुत ही भयानक कृत्य किए हैं, तो इसमें उसको फिर भुगतना तो पड़ेगा। वो
सभी तो ऐसे हो गए नहीं,
देखो कर्म जो होते हैं ना वो भगवान भुगता के ही छोड़ते हैं, कर्म बाकी छोड़ते नहीं है। कर्म भगवान कर्मानि निर्दति, जो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है उसके कर्म जला देते हैं भगवान, लेकिन जब तक ये शरीर रहेगा तब तक वो थोड़ा कर्म तो आपके लिए छोड़ ही देंगे। अगर सीधी सी बात है, सारे कर्म ले तो शरीर खत्म हो गया, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ, पूरा खत्म। ये जो हम जीवन जी रहे हैं ये हमारे कर्म का परिणाम के कारण तो है ये शरीर, लेकिन अगर सारे कर्म नष्ट हो गए तो ये शरीर ही नष्ट हो गया आपका,
पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए तो शरीर
खत्म हो गया, पूरा कर्म खत्म हो गया तो शरीर खत्म। तो वो तो बहुत ही कम रेयर केस में है, जिसको बोलते हैं सदेह मुक्ति, बोलते हैं सदेह मुक्ति। सदेह मुक्ति का क्या अर्थ होता है, ऐसा नहीं कि ये शरीर को लेकर के जाता है, ऐसा नहीं होता है सदेह मुक्ति का अर्थ। सदेह का अर्थ होता है कि ऑन द स्पॉट भगवान उसको उद्धार कर दिया, ऑन द स्पॉट एग्जैक्टली, उसको लाइफ आगे का नहीं करना है,
शरीर में रहते हुए भी मुक्त है।
हाँ,
जीवन मुक्ति वही
भगवान
है। ऐसे तो हमारे आचार्य भी जीवन मुक्त है, लेकिन कुछ ऐसे थे, जैसे एक कुत्ता था महाप्रभु के साथ आया था, तो महाप्रभु उसको कोकोनट खिलाया था, तो उसका उद्धार सदेह मुक्ति का अर्थ है कि उसका शरीर भी बाद में दिखा नहीं, बाद में ऑन द स्पॉट
दिखाई
नहीं। जैसे समझो सामने एक कुत्ता है, भगवान महाप्रभु उसको कृपा किया, भगवान के धाम भेज दिया, नियम के अनुसार मनुष्य बन के ही भगवान के धाम जा सकता है, पशु के योनि से भगवान के धाम नहीं जा सकता नियम के अनुसार। लेकिन भगवान ने क्या किया, कुत्ते के शरीर से डायरेक्ट भगवान के धाम, मनुष्य योनि भी नहीं, भगवान के धाम। और वो कुत्ते का शरीर है, उसका कोई क्रिमेशन में कुछ नहीं करने का, शरीर की शरीर भी हटा दिया, शरीर के साथ शरीर भी नष्ट कर दिया, उसका दिखाई नहीं, शरीर भी नष्ट कर दिया भगवान ने। तेरी स्पेशल कृपा सदेह मुक्ति। आप किसी भक्त को नियर डेथ एक्सपीरियंस है, नियर डेथ एक्सपीरियंस का अर्थ होता है मृत्यु को जा करके ताली हाथ में देकर के आ गए वापिस। हमें याद नहीं है कुछ,
उसका कुछ मतलब आपने जैसे बोला वो आंखें थी वो बहुत मतलब बड़ी बड़ी हो गई थी।
हाँ।
और सब लोगों ने ऐसा छोड़ दी थी कि हाँ। गया, लेकिन फिर भी वापिस आ गया।
यस, फिर और किसी भक्त को कुछ है,
बता रही थी कि छह महीना का था ना मेरा जो है ना जीव यहाँ पे चढ़ा गया था, तो सभी लोग ऐसा बोल रहे थे कि अभी इसको निकालो अभी ले जाओ, 10 मिनट आधा घंटा रुकने को बोला तो आधे घंटे में वापस आ गया।
लेकिन उसमें आपको क्या हुआ वो कुछ याद नहीं। यस, और कुछ भक्तों को आपका कुछ है नियर डेथ एक्सपीरियंस?
ऐसा नहीं है, मगर ऐसा मतलब 3-4 साल पहले डेंगू हुआ था।
uh-huh.
तो एकदम से सेल बहुत कम हो गए थे।
uh-huh.
तो उसमें क्या हुआ था, सभी बोल रहे थे बहुत ये मतलब खतरनाक सिचुएशन आ गया। एक बार विचार हुआ कि मतलब जैसे अभी जाने वाले हैं,
ऐसा एक बार मन में आ गया था कि अब सही छोड़ दे।
ऐसा हुआ कि ठीक है, अगर भगवान की इच्छा होगी तो ठीक है, अगर होगा तो अभी हो जाएगा, नहीं तो मैं रिकवर हो जाऊंगा। तो ऐसा सोचा, तो 1-2 दिन बाद एक रिकवरी।
अच्छा, आपका किसी का है, आपका है कुछ, आपका है भी कुछ मृत्यु के पास में करीब में कुछ हुआ अचानक से उधर हो गया, वेरी रेयर, आपका है कोई कुछ?
पापा का एक्सपीरियंस था, मेरे पापा जब मैं
पापा का, लेकिन वो क्या सोचते थे वो तो आपको थोड़ी शेयर करेंगे।
लेकिन वो जो बोलते थे वो मैं बोल सकती हूँ, बोले मैं जाके आया सब अंधेरा था, कुछ कुछ दिखाई दे रहा, लेकिन प्रॉपर नहीं। yes. वो आधे रास्ते से मैं वापस आ गया उस टाइम पे, ऐसा बोल रहे।
आप क्या कह रहे थे?
करीब 3 साल पहले मैं भाईगाम से आ रहा था, तो चामुंडा के पास ट्रैफिक ज्यादा था, तो कब से पीछे से पब्लिक के रिवार ने ठोकर दे दी कार को, मालूम नहीं कार 3-4 रोटी खा के गिलास टकरा गई। अकबर जो लड़के थे भाई प्रशुत्र मुझे निकाला और फ्राइड में रख दिया।
हाँ।
मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहा, लेकिन थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद जब ख्याल आया तो आसपास दो चार लोग थे, वो बोल रहे आप कृष्णा कृष्णा बोल रहे थे, हमने कृष्णा को फोन किया है।
अच्छा, कोई कृष्ण होगा मोबाइल में, कोई होगा कृष्ण,
तो वो कुछ उठा नहीं दिया फोन, तो आप बात करो उनसे।
अच्छा,
भगवान
रखने वाले तो भगवान कृष्ण। ओके, गुड। हाँ, तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती है लाइफ में कि आपको ऐसा लगेगा बस अब शरीर छूटने ही वाला है, लेकिन फिर आप वापस आ जाते हो ना। सो इस तरह से हमारे लाइफ में ये बड़ा आवश्यक है कि अगर हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे तब हमें इस प्रकार की घटनाओं को या अंतिम समय में मृत्यु का समय में भगवान का चिंतन होगा।
ये शरीर टूटने वाला होता है कि ये
जब हम बात कर रहे थे वो
ऐसा केस होता है, तो ऐसा क्यों होता है?
नहीं नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति मृत्यु के बहुत ही करीब जाकर के छोड़ उसको वापिस हुआ तो उसके कर्म के परिणाम के स्वरूप ऐसा होता है कि जिसको आपके गुजराती में घात बोलते हैं, पता है आपको गुजराती में ऐसा घात बोलते हैं? नहीं, मीन्स वो ऐसा समझता कि कर्म के अनुसार कि वो व्यक्ति मृत्यु का अनुभव तक कर लेता है ऐसे। हाँ, मीन्स वो मृत्यु तक पहुंच जाता है वो व्यक्ति, बस वो एक सेकंड एक स्टेप का ही बचा था, बस एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो मर गया ऐसा था, लेकिन बच गया। तो उस समय क्या होता है कि विचार सब कुछ अलग अलग हो जाता है आपको, दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर समय पे आप क्या सोचते हो क्या करते हो, इससे आपको फायदा होगा कि अब जब मृत्यु आएगी तब क्या करेंगे आप।
घबराहट सी हो जाती है, बोल नहीं पाते,
दो सेकंड की देरी होती है ना, तो सोना फट जाता
है। हाँ, अब ये दो सेकंड में था, एक सेकंड के लिए था, एक सेकंड के लिए मैं कार में बैठा था और पूरा कार जल रहा था, कार पूरा जल रहा था और वो अग्नि की जो लपटे होते हैं ना, फ्लेम्स अग्नि का जो वो मेरे दो पांव के बीच में से ऊपर, दो हाथ के बीच में से ऊपर अग्नि चारों ओर ऐसे, और मैं सीट के ऊपर बैठा था, मीन्स मैं जिस सीट पर बैठा था वो पूरा सीट जल रहा था और उसके ऊपर मैं बैठा था और मेरा सीट बेल्ट लगा हुआ था, कार का सीट बेल्ट, हाँ वो लगा हुआ था और वो सीट बेल्ट निकल ही नहीं रहा था, बहुत मेहनत किया निकल ही नहीं रहा था सीट बेल्ट, भारी नहीं आ रहा था। सारा लोग इकट्ठा हो गए थे, सब लोग आ गए, मेरे पापा पूरा प्रयास किया कि सीट बेल्ट तोड़ दूं, निकालने के लिए पूरा प्रयास कर रहे ऐसे पूरा, लेकिन खींचा, एक आदमी भी आया दूर से कि अंकल से नहीं होता है तो चलो हम थोड़ा दम लगा करके कर देते कुछ ऐसे, लेकिन सबको पता था कि पूरी कार जल रही है तो कोई पास में कैसे आएगा, पास में तो आ ही नहीं सकता कोई, डरेगा ना कोई भी आदमी, पास में कैसे आएगा, हाँ ब्लास्ट तो कभी भी हो सकता है, तो इतना फिर भी एक कोई था आदमी तो दौड़ करके बेचारा आया बचाने के लिए और पापा को हेल्प करने का प्रयास किया, उसने बेल्ट भी निकाल लिया, पापा ने थोड़ा खींचा बेल्ट भी निकला, दरवाजा खोला, फिर उठाने में हेल्प सहायता की पापा को, मुझे उठाने के लिए क्योंकि अचानक से तो उठा भी नहीं पाते तुरंत, तो उठाने में सहायता की, फिर उठा करके करीब समझ लो 30-40 फीट दूर ले गया पापा और वो भाई मिलकर के, 30-40 फुट दूर, यहाँ पर हम बैठे तो घर के बाहर तक उससे थोड़ा सा दूर, 30-40 फुट दूर ले गए और दौड़ करके, और जैसे ही मुझे जमीन में ऐसे रखा, जैसे ही इशारा हुआ था एक ही सेकंड के अंदर, जैसे ही जमीन पे रखा बड़ा ब्लास्ट हो गया, पूरा ब्लास्ट, और मेरा व्हीलचेयर भी उसी के अंदर था, कार के अंदर कार भी वो भी जल रहा था। सो आई जस्ट इमेजिन, आई मीन आई, और फॉर्चुनेटली कृष्ण की कृपा से मेरे शरीर पर या मेरे कुर्ते तो कुर्ता भी नहीं जला, चमड़ी तो नहीं कुर्ता भी नहीं जला, एक 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 होल भी नहीं हुआ कुर्ते में, छोटा सा होल होता है वो है, होल भी नहीं हुआ कुछ नहीं।
हमारे घर में भी ऐसा हुआ, पूरा घर चल रहा था ना, वो प्रभुपाद जी का वो है ना मंत्र, वो ऐसा का वैसा ही रहा।
यस सो दैट हैपेंस। इसलिए मैं एक्चुअली आपको इसलिए मैंने शेयर किया कि कई बार कुछ पर्सनल चीजें बताने से भी आपको पता पड़ता है कि किस प्रकार से व्यक्ति मृत्यु के करीब जा करके बच सकता है। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा प्रश्न किया आपने। जब चारों ओर आग लग रही थी तो उस समय मेरे हाथ में जपमाला तो थी और मैं जप तो कर ही रहा था, मेरे सामने भगवान नृसिंहदेव थे, कार वाला जो छोटा फोटो होता है वो नहीं, मेरे साथ बड़ा फोटो भी था नृसिंहदेव का, और वो साथ में लेके जा रहा था मैं, वो सामने था। और जब ये कार जल रही थी तो मैं ऐसे उस समय पर्टिकुलर मोमेंट कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि अब मेरी मृत्यु आएगी या नहीं आएगी या क्या होगा, ये इतना सब कुछ इतना तेज हुआ, इतना फास्ट हुआ कि मैं कुछ सोचूं उससे पहले मुझे बाहर निकाल करके ले लिया गया। लेकिन जब बाहर मुझे रखा जमीन पर और जब फटा सामने, तब मैंने भगवान का वो थैंक यू किया, ओ कृष्ण यू सो गुड।
नहीं
मैं और पापा अकेले थे, और कोई नहीं था। और ये कहाँ हुआ था? इस्कॉन ब्रिज है ना, ये अपना मैकडोनाल्ड है ना, उधर हुआ था ये, सुबह करीब 11 बजे, कल 11 बजे 12 बजे करीब।
अचानक से जल गया?
हाँ मैं इसको हुआ होगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ। बट दैट द पॉइंट इज दैट चिंतन भगवान का होना आवश्यक है। सो इसलिए भगवान कहते हैं सातवें श्लोक में पढ़िए, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, सातवां श्लोक।
अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए।
yes.
अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे।
yes. भगवान यहाँ पर बहुत अच्छा स्पष्ट रूप से इस बात को दोहरा रहे हैं कि तस्मात सर्वेषु कालेषु हमेशा निरंतर सर्वेषु माम अनुस्मर, मेरा चिंतन करो। सर्वेषु कालेषु का अर्थ होता है नित्य हमेशा, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध च मीन्स युद्ध करो, विच अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मन और बुद्धि मुझ में स्थिर रहेगा और आप मेरे धाम को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त ये पूछे कि क्या ये आवश्यक है कि हम भगवान का चिंतन 24 घंटा करें, तो भगवान कहते हैं हाँ आवश्यक है, लेकिन हम हमारी ड्यूटीज कर रहे हैं, कर्तव्य पारायण है। आपने बताया था ना अभी तीसरे अध्याय में कृष्ण को, कृष्ण ने बताया था कि अपने कर्तव्य कर्म का करो अर्जुन, अपने कर्तव्य से कभी मुख मत मोड़ो, यू नो आपने बताया था। तो अगर मैं कर्तव्य करूं तब आपका चिंतन करना क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है? हाँ भगवान का आवश्यक है, लेकिन उस समय तो मैं उसमें ध्यान लगा है ना। अगर समझ लो कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ, तो कुकिंग कर रहा हूँ तो फिर मैं आपका चिंतन थोड़ी करूंगा, तो कुकिंग का चिंतन करूंगा ना, इसमें सब्जी डालना है, इसमें तड़का लगाना है, तो उसका चिंतन करूंगा, तो आपका चिंतन कैसे होगा? तो क्या आवश्यक है ये चिंतन करना? भगवान ने कहा आवश्यक है। इसलिए भगवान का आंसर है कि मेरा चिंतन करो और युद्ध करो, अथवा युद्ध करो नहीं, या मेरा चिंतन करो अथवा युद्ध करो, दो में से एक चलेगा ना, ऐसा नहीं। मेरा चिंतन करो और युद्ध करो। और इंटरेस्टिंगली पहले बताया मां मनुस्मरण, बाद में बोला युद्ध, पहले युद्ध नहीं बोला, कि सर्वस्वा सर्वेषु कार्येषु युद्धे च माम अनुस्मर, ऐसा नहीं बोला। पहले बोला माम अनुस्मर, पहले मेरा चिंतन करो फिर युद्ध करो,
चिंतन करते हुए।
हाँ, चिंतन करते हुए युद्ध करो, ऐसे डायरेक्टली नहीं, चिंतन करते हुए।
वृक्रासुर की कथा हुई,
यस,
युद्ध करते फिर भी
भगवान का चिंतन करते, यस, चिंतन करते करते युद्ध करो, दैट्स और एक कुछ लोग ऐसा भी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर युद्ध करोगे तो वो अकेला काफी नहीं है, लेकिन मां मनुस्मरण किया होगा ना तो वो अकेला भी काफी है। युद्ध से तो करना है इसलिए क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए युद्ध कर रहे, लेकिन ये प्रिंसिपल वस्तु नहीं है। प्रिंसिपल वस्तु क्या है? मां मनुस्मरण, मेरा चिंतन करो, तो मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्म करो, ऐसा भगवान कहते हैं, इस तरह से युद्ध करो। लेकिन अगर आप कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है, ऑफिस के काम में लगा है कोई व्यक्ति, आप समझ लो उसको इतना, उसको बोले इसका इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये फाइल का क्या है, उस प्रोजेक्ट का क्या है, इतना सब काम होता है ऑफिस में, तो आप कितना बिजी रहते हो, राइट? तो इतना सब काम होता है, उस समय आप भगवान बोलते कृष्ण का चिंतन करो, कैसे करेगा? मुश्किल है प्रभु, प्रभु ये तो मुश्किल है। तो फिर भगवान कहते हैं हाँ वो तो मुझे पता है कि मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करो, अभ्यास।
यहाँ पे प्रभु जी एक रसखान भक्त हुए हैं नॉर्थ इंडिया में,
रसखान, रसखान आई नो,
तो उन्होंने यही कहा था कि रसखान गोविंद यू भजिए जिमि नागरिक उचित गागर। कहते हैं जो स्त्री पानी भर के, पहले पनघट से पानी भर के औरतें लाती थी, सिर पे रखी होती थी गागर,
बाकी
बातें करती थी और चलती चली, बट उनका चित्त हमेशा उस गागर में लगा रहता है, गिरना पड़ेगी।
अच्छा उदाहरण है, प्रभुपाद भी इस उदाहरण को देते थे।
कहते हैं कि उसको रसखान गोविंद यू भजिए जिम नागरिक उचित गागर,
सही बात है। अगर पानी का बेड़ा अगर आपके सिर पे है, मटकी सिर के ऊपर है पानी का, वो बात करती है, हिलती है, डुलती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसके सिर से गिरेगा नहीं वो,
उचित तो नहीं
होता। लेकिन अगर मैं ऐसा करने जाऊंगा ना तो गिरेगा, क्योंकि मुझे आता नहीं इसको कैसे किया जाए। आई डोंट नो, माताओं को शायद पता है, आप लोग का ऐसा एक्सपीरियंस है, सिर के ऊपर पानी का घड़ा रख करके उसको पकड़े बिना चलना है, मुश्किल है ना? हाँ मुश्किल है, आई डोंट नो, माताओं को थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मुश्किल है ना? और तो क्या, वो मटकी के ऊपर वो हाँ, लेकिन उसके नीचे तो स्टैंड भी लगाते हैं आजकल तो,
पहले तो ऐसे ही लगाते थे तीन चार
लोग। हाँ तो स्टैंड वैंड वाला तो चक्कर भी तो क्या है, वो तो कुछ नहीं होता उसमें, कोई बिना स्टैंड के मटका रखे।
सिटी में जब होता है तो तीन मटके एक के ऊपर एक रख के,
हाँ बोलो, अभी एक एक मटके की बात नहीं है, तीन मटके की बात हो रही
है,
नहीं दिया रखते
अच्छा।
इसलिए
उसका जो होता है माता जी जो भी बोला सोचता है, लेकिन उसका इसमें बहुत हैवी होता है,
नवरात्रि में करते
हैं जब खाते हैं ना तब वो बहुत हैवी लगता है।
फिर प्रभुपाद ने एक दूसरा एग्जांपल दिया, जो चैतन्य महाप्रभु ने भी दिया था रूप गोस्वामी को, दूसरा एग्जांपल क्या दिया था कि अगर कोई स्त्री जिसका शादी हो चुका है, लेकिन अगर वो स्त्री तो किसी दूसरे पुरुष के साथ उसका संबंध है और वो उसका चिंतन करता है, वो उसका प्रेमी है कोई, तो क्या करता है वो, क्या करती है, पूरा दिन वो काम करती है घर का पूरा सब कुछ, वो बहुत ही अच्छी तरह से करती है ताकि किसी को शंका भी ना हो कि ये क्या कर रही है, राइट? बहुत अच्छी तरह से करती है, लेकिन उसके मन में निरंतर
पुरुष का ध्यान
चिंतन रहता है दूसरे व्यक्ति का। तब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ऐसा कहा था कि जैसे वो व्यक्ति पूरा दिन भगवान का पूरा दिन कार्य करेगा, ऑफिस का काम, घर का काम, ये काम, लेकिन उसका मन लगा रहा है हमेशा कृष्ण के चरणों में, उसका मन हमेशा कृष्ण के, उसको जब भी अवसर मिलेगा तब वो सब कुछ छोड़ करके वापिस कृष्ण के शरण में, हमें शरण नहीं होता है लेकिन उनकी नवदा भक्ति में फिर से जुड़ जाता है। तो ये नाम और स्मरण, इसका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। सो एक छोटा सा एक्सरसाइज हम करना चाहते हैं आपको। सो कैन वी मेक थ्री ग्रुप्स, मे बी 10-5 मिनट, 3 और 6 और 3 9, 3 भक्त है। ओके, ओके, तो आप ऐसा करते हैं कि हम 3 ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आप पीछे 4 भक्त है उनका एक ग्रुप, और आगे यहाँ 3 भक्त है उनका एक ग्रुप, और 2 माताओं का एक ग्रुप। अभी प्रश्न यह है ये सारे श्लोक महत्वपूर्ण थे इसलिए थोड़ा लंबा चर्चा हो गया, लेकिन वी आर ट्राइंग टू फिनिश द चैप्टर बाय व्हेनेवर द नेक्स्ट लेसन इज देयर। 8वां अध्याय मुझे पूरा करने का इच्छा था, लेकिन 28 श्लोक है ना, बिकॉज मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। सो वी स्टॉप हियर टुडे एंड नेक्स्ट जो भी होगा वो आई विल टॉक टू प्रेमदास, तो आप सर्कुलेट कर देना।